इस सत्संग प्यार से बोलिए। सत्संग कुछ अरसे के बाद आप जी के बीच बैठने का सतगुरु ने अवसर दिया। संत जहाँ भी बैठे हों वो एक ही बात कहते हैं, हर इंसान को ये सबकी आवाज को ही उसी की तरफ ही ध्यान दिलाते चले जा रहे हैं, क्योंकि संत महात्मा एक ऐसे जन्म दाते दिए होते हैं जो इनमें भी रोशनी होती है और जो इनके पास आते हैं उनको भी रोशनी देते चले जाते हैं, क्योंकि संत का कर्म ही ऐसा बन जाता है। अभी आपने अनेकों संतों से सुना, उन्होंने अपनी बात अपने अपने ढंग से अपने अपने तरीके से अपनी आवाज को आपके सामने रखा, जिसमें नरोल भक्ति भक्ति दिखाई दे रही थी, क्योंकि भगत के हिस्से में भक्ति आती है। ये हरि का नाम ही जैसे पढ़ते हैं कि हर का नाम सदा सुखदायी, ये हरि का नाम जो है सभी काल के लिए सुखदायी होता है। और जो वस्तु हमारे पास होती हैं, जब होती हैं तो हम बड़े कहते हैं हम सुखी हैं, बड़े खुश हैं, जब वो नहीं होती तो फिर हम दुखी हो जाते हैं। चाहे वो चेतन में है चाहे जड़ में है, इसीलिए महात्मा कहते हैं कि हर वक्त दाता के ऊपर ही ऐसा भरोसा रखे कि जिस भरोसे से हमें सुकून मिलता है, चैन मिलता है। और भरोसे तो चाहे कितने भी दुनिया दे दे, बेचैनी को बाजार तो कुछ भी नहीं देंगे, क्योंकि जिसके पास जो कुछ होता है वही दूसरे को देता है। जे चैन है हमारे पास तो हम चैन बांटते जा रहे हैं, और जिसके पास बेचैनी होती है वो दूसरे को देता चला जा रहा है। क्योंकि आप जानते हैं कि जिस बर्तन में जो कुछ भी होता है वही बाहर निकलता है। अगर मिर्ची पड़ी है तो मिर्ची निकलेगी, शक्कर पड़ी है तो शक्कर निकलेगी। इसीलिए महात्मा के पास एक ऐसी मीठी जवाब होती है, क्योंकि मीठी जवाब वाले की संगति से इनकी होती है। जैसे पढ़ते हैं कि मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा और संभल थक्की जी शो कदे ना बोड़े पर, साथ संभलने की भी बात आ गई। मीठा तो बोलते हैं सतगुरु हर वक्त, और ऐसी मीठी आवाज और धीरे सी आवाज होती है। कभी कभी स्टेज पे पास बैठी होती हूँ, बात करते हैं तो मैं दोबारा कहती हूँ हाँ जी क्या आपने कहा, पास बैठे हुए भी वो बात समझ में नहीं आती, क्योंकि ये महात्मा सतगुरु जितने भी संसार में जिस समय भी आए जिस युग में भी आए उन्हें हमें ये बोली भी सिखाई, बोलने का ढंग सिखाया कि महापुरुषों की कैसी बोली होती है, कैसा आवाज होती है। क्योंकि संसार में रहते हैं, संसार की निगाह भी हमारे ऊपर ही होती है, और चाहे जो कुछ भी कोई दुनिया में करे उसकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं देता। पर संत कोई भी ऐसी बात कह दे तो कहने वाले कह देते हैं आप तो महात्मा हैं, आप तो संत हैं, आप तो गुरु वाले हैं। बाकी हम जितने भी बैठे हुए हैं सिर्फ गुरु वाले नहीं, पूर्ण सतगुरु वाले बैठे हुए हैं कि जिसका पूरे का किया सब कुछ पूरा, वाद घाट किछ नहीं, जिसमें कोई कमी की गुंजाइश नजर नहीं आती, ऐसा सतगुरु हमारे जीवन में आया। इसीलिए हम सज्जे सवारे हुए बैठे हुए हैं। जैसे पहले भी भक्तों ने कहा कि तेरी कृपा से सजे हम हैं, नहीं तो वो सो गरीब करोड़ पड़े। कहा कि दाता तेरी कृपा से सजे हुए बैठे हैं, नहीं तो अनेकों अनेकों अरबों खरबों की दुनिया जाने कितनी इस धरती पे बस रही है। पर तूने हमें एक एक करके चुना। जैसे हम किसी बगीचे में चले जाते हैं, गार्डन में चले जाते हैं, अनेकों तरह के फूल होते हैं, हम एक एक को चुनकर कितना सुंदर गुलदस्ता बना लेते हैं। माला में भी सारे रंग हम डाल देते हैं, जितने फूलों के रंग होते हैं उसमें भी परो लेते हैं, और कितने सुंदर वो लगते हैं। कहते हैं कितना सुंदर गुलदस्ता, कितनी सुंदर माला। इसी तरह ही सतगुरु ने हमें कोई कहा के रहने वाले, कोई कहा के पहनावा नहीं मिलता, खाना नहीं मिलता, बैठना उठना नहीं मिलता, बोली भाषा भी नहीं मिलती, फिर भी एक ज्ञान जब हम सत्संग सौत की तरफ जाते हैं तो भात भात की आवाज होती है, भात भात की बोली होती है, बंगला भी होती है, महाराष्ट्री भी होती है, जाने इतनी इतनी वहां बोली है, कदम कदम पे बोली बदल जाती है। पर पूरी बात की समझ आए ना आए, जब वो सतगुरु का नाम लेते हैं, निराकार का लेते हैं, साध संगत का लेते हैं, तो सारी बात की समझ आ जाती है। क्योंकि एक ही आवाज है, जैसे कहे कि सो सियाना इको मत मूर्ख आपो अपनी, सो सियाने हो कैसे ढंग से भी बात करे वो एक बात पे। अभी आप सुबह से इस तेज से श्रवण कर रहे हैं, सब ने एक ही बात कही, किसी ने भी कोई अलग बात नहीं कही, जा सतगुरु की कही, जा सात संगत की कही, जा निराकार की कही, क्योंकि एक ही बात इनको समझ आई। ये उसी बात को ही बार बार दोहराते चले जाते हैं, क्योंकि इनका अपना विश्वास, अपना यकीन, अपना अकीदा सतगुरु के ऊपर है। जिसका अकीदा यकीन सतगुरु के ऊपर हो जाता है, फिर सत्संग तो उसको चिंता की जरूरत नहीं होती। जैसे कहा कि सब कुछ कीता मैं तेरे हवाले, लत्थी मेरी चिंता तू आपे संभाले, ये आप ही मन संभाल करता है। हमने पहले प्राण नहीं तन मन धन दे दिया, दिया जब गुरु के पास हो तो सुखी सुख होता है। मन दिया, मन बेचे सतगुरु के पास, ते सेवक के कारज रास। इस मन को गुरु के हवाले किया तो सारे काम रास होते चले गए। हाँ, जब अपने पास फिर ले लेते हैं, इसको अपना मान लेते हैं, तो फिर तो आप जानते हैं कि मन कैसी उडारियां उड़ता है। मन तो फिर चैन भी नहीं लेने देता इंसान को, इतनी ऊंची ऊंची उडारियों पे ले जाता है कि इंसान फिर संभल भी नहीं पाता। फिर कब संभलता है? जब शासन कहा कि ये गुरु के हवाले जब कर देते हैं, गुरु की आवाज याद में आ जाती है, तो फिर ये समझ जाता है। मन लोचे बुरियाइयां गुरु शब्दी है मनोड़िए, गुरु के शब्द द्वारा फिर ये मन काबू में आ जाता है कि तू फिर अपने पास इसको बुला लिया, गुरु के पास रहने दो। इसी तरह तन भी जब अपना समझते हैं, थोड़ा सा रोग भी होता है तो बड़े परेशान हो जाते हैं। जब कहते हैं दातार तूने दिया है तू जान तेरा काम जाने, तो फिर सासन तन की तकलीफ भी फिर कम दुखी करती है। इसी तरह धन भी जब कहते हैं दातार ये तेरी देन है तूने दिया है, पता नहीं हमारे नसीब में था कि नहीं था, ये भी सुखदाई हो जाता है। जब इसको अपना कहते हैं मैंने कमाया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, जब मैं बीच में आ जाती है तो फिर ये भी दुखी करना शुरू कर देता है। ये सार्वजनिक रोज की बातें हैं, हमारे इस्तेमाल में आती हैं। ज्ञान की कोई कमी नहीं है, ज्ञान तो बांटा जा चुका है, कोई दुनिया का कोना खाली नहीं। बाबा जी की कृपा से कोई ऐसा दुनिया का कोना नहीं। वर्ल्ड टूर भी जाने बाबा गुरबचन सिंह से लेकर अभी तक पता है कोई 30-35 वर्ष से लग रहे हैं, कोई कोना ऐसा खाली नहीं, ना हिंदुस्तान का ना बाहर के देशों का। पर जहां जहां भी संत बैठे हुए हैं, उनके जीवन में ऐसी तब्दीली आई, नहीं तो आप जानते हैं कि वो ऐसे मुल्क हैं, नौजवान तो एकदम ही अपने होश आवाज को बैठते हैं। पर जो संगत में आने वाले, उनको देखा कि कैसे वो गुरु भक्ति में जुटे हुए, जब वो भाषण देते हैं, चाहे वो पंजाबी नहीं जानते, लिखा इंग्लिश में होता है, पंजाबी में कह रहे होते हैं, हिंदी में कह रहे होते हैं, पर बात निशाने की कहते हैं। नहीं तो वहां तो ऐसे बच्चे जो भटक जाते हैं, नौजवान, वो शासन फिर समझ नहीं पाते। पर जहां जहां भी बाबा जी की कृपा, जितने भी परिवार वहां हैं, उनके बच्चे भी जब एक एक बोलते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी स्टेज पे खड़े होकर कोई बात कह देते हैं, तो दिल में ऐसी हैरानी आती है कि हम तो बरसों बरस हो गए ऐसी बात नहीं कह पाए जो ये बच्चे कह गए। कितना विश्वास, कितना इनका भरोसा और कितना यकीन अपने गुरु के ऊपर है। और साथ संगत, क्योंकि विश्वास वालों के ही बेड़े पार होते हैं, दातार ने हमारे जितने भी बच्चे हैं, नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं, कैसे साथ संगत हमने जब जीवन अपने देखते हैं, बुजुर्ग देखते हैं, नौजवान देखते हैं, फिर शासन जब संसार से मिलाते हैं, जमीन आसमान का अंतर नजर आता है। चाहे हम किसी टाइम में किसी बात में परेशान होके कह दें किसी को देखते हुए, दो जब आपस में कोई बहन भाई भी तो बात ऊंची नीची कह देते हैं, तो कहने वाले कह देते हैं कि हमारे तुम्हारे में अंतर क्या है, फर्क क्या है। पर सास ने जब अंदर झांक डालकर देखते हैं तो जमीन आसमान का फर्क लगता है, क्योंकि सतगुरु की सिखलाई, ये सास में ऐसी सिखलाई होती है कि जीवन में पलटा दे देती है। दुनिया से अलग भी रहते हुए दुनिया के बीच ही रहते हैं, क्योंकि वैसे तो जैसे लिखा है हमारे धार्मिक ग्रंथों में, उनमें तो बड़ा भगता ते संसारियां कदे ना आया जोड़, उनका मार्ग और है इनका मार्ग और। ये रास्ता ही अलग होता है, दुनिया में रहकर दुनिया से न्यारे होते हैं। यही साथ संगत, ऐसे जीवन में तब्दीली आती है जो साथ संगत एक मार्ग दर्श करा देती है, परोपकारी बना देती है। क्योंकि जब अपने अंदर विश्वास पूरा हो, तभी कहा है कि पहले मन पर बुद्ध हो अपना पाछे होने जाओ। अपने मन को तसल्ली होती है फिर दूसरे को प्रेरणा देते हैं, जब अपना ही मन डावाडोल हो तो दूसरे के मन को क्या खड़ा करेंगे, क्या प्रेरणा देंगे। तो आओ साथ संगत, संग तारे को संग डूबे, संतों की संगत मिलती है तो पार उतारा हो जाता है, संसार की मिलती है वो डूबने वाली बात हो जाती है, क्योंकि वो तो ऐसे एक मुझे बात याद आ गई कि एक बच्चा था, स्कूल पढ़ने जाता था, तो वहां से क्या करेंगे, कभी कलम किसी की उठा लाए, कभी दुआत लाए, अभी तो वो बात है ही नहीं, कापियां पेन हो गए, तो कभी कुछ उठा के ले आए, तो माँ भी रोके नहीं, वो भी खुश हो जाए, चलो बच्चा अपना काम आप ही कर रहा है। इसी तरह ही करते करते पढ़कर फिर बड़ा चोरियां करनिया शुरू कर दिया, फिर भी माँ ने नहीं रोका, किसी ने नहीं रोका, क्योंकि आप जानते हैं कि माँ का पाठ जो है बच्चों के लिए बड़ा होता है। तो वो सास ने किसी तरह करते करते ही डाकू बन गया, कत्लेआम शुरू कर दी। एक दिन ऐसा आया कि उसको फांसी की सजा हुई, जब हुई तो उससे पूछा, बेटे बता किसी से मिलना है, किसी से बात करनी है। कहने लगा, और तो नहीं, मेरी माँ को बुला दो। जब माँ सामने आई, बड़ी रोती चिल्लाती, तल्ले डालती हुई, वास्ते डालती हुई कि मेरे बेटे को छोड़ दो, मेरे बेटे को फांसी पे नहीं चढ़ाना। तो साथ संगत कहने लगा, माँ अभी क्यों रोती है, उस वक्त क्यों नहीं मैंने रोका, आपने मुझे नहीं रोका। तो साथ संगत कहने लगा, मैं माँ के कान में बात करनी है। माँ ने जब कान आगे रखा तो उसने काट लिया, बड़ी चिचलाई, कहने लगी ये क्या। कहने लगे, माँ उस वक्त मुझे रोकती ना, अभी क्यों रोती है। कहने लगे, अच्छा अपना काम करो। तो आओ साथ संगत, ऐसी ऐसी बातें जब सुनने को आती है तो हृदय भी ऐसे कांप उठता है। ये दाता कृपा करना, सबको सम्मति देना, सबके लिए सम्मति साथ संगत फिर मांगनी पड़ती है दाता के चरणों से। नहीं तो सार्थक ये मन तो ऐसा है, इतना ही भटक जाता है और कभी कभी इसको इतना मान आ जाता है कि बस मेरी तो निभ गई, मैं तो मुक्त हो गया, मेरा काम तो पूरा हो गया। इसी तरह ही चंद वर्षों की बात, एक महापुरुष जैसे बैठे हुए गाड़ी चला रहे थे, जिस गाड़ी में मैं बैठी हुई, तो साथ ही दो तीन बहनें सत्संग में जा रही थी, तो ऐसे ही हम आपस में बातें करने लगी कि दाता कृपा करे निभा दे, बाबा गुरबचन सिंह के समय की बात। तो कहने लगे, आपस में दोनों बातें करने लगी, परमान भी दिए पानी परम पनारिया, रंगो रंग कड़े पर्या उसता जानिए जिसका तोड़ चढ़े, अभी नाव समुद्र में ना जाने क्या होए। तो सासन उन्होंने सुन कर कहा, क्या माता जी आपकी तोड़ नहीं निभी? मैं कह नहीं महाराज, कहाँ निभी, अभी तो नाव समुद्र में चल रही है। कहने लगे, मेरी तो निभ गई। मैं क्या, फिर तो बड़े भाग्य आपके ऊंचे, आपकी निभ गई। सासन चंद बरस ही ना बीते, वो दिखाई नहीं देने लगे, कहाँ गए? तो कहाँ नहीं, कहाँ निभी, निभे तो गुरु के चरणों में। कहते हैं कि मरता मरता जग हुआ, मर भी ना जाने कोए, ऐसी मरनी जो बड़े थे वो ना मरना होए। जो मर जाता है अपना आप गवा देता है, आप गवाइए ताश हो पाइए, और कैसी चतुराई, चतुराइयों से कुछ नहीं बनता। चाहे कितना ही आदमी होशियार हो, कितना ही अपने आप को सियाना समझे, कुछ भी आप पल्ले नहीं पड़ेगा। ये तो कहा कि मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कोई मतलब आ जाए दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। कहते हैं कि जैसे मेरे कई बुजुर्ग भाई बहन बैठे होंगे जिनके अपने फार्म जमीने हैं, आप देखते हैं कि कनक की यों की कितनी बोरिए भरी होती हैं, साफ सुथरी होती हैं। वो जब जमीन में डालते हैं तो मिट्टी में मिलाना पड़ता है, फिर सासन कितने खेत लहराते हैं। चंद बोरिए डालते हैं तो पता नहीं कितनी बोरिए भर के ले आते हैं, हमारा घर भरा जाता है। तो आओ सासन भी तो पहले डालना ही पड़ता है। जे इंसान कहे, किसान कहे कि मैं इतनी अच्छी गेहूं मेरे पास एक एक दाना चुगा हुआ, तो मैं कैसे मिट्टी में मिला दूं, फिर उसका घर नहीं भरा जाएगा अनाज से। और साध संगत, इसी तरह अपने आप को मिटाना पड़ता है गुरु के दर पे, अपनी हस्ती को मिटाना पड़ता है और अपनी औकात भी याद रखनी पड़ती है। मैं उससे नहीं बता रही थी कि एक नगरी में ऐसा रिवाज था कि जो सबसे पहले इस नगरी में दाखिल होगा उसको राजा बनाया जाएगा। ऐसे करते करते एक घास खोदने वाला उस नगरी में दाखिल हो गया। जब हुआ तो उन्होंने पकड़ लिया, कहने लगे तुझे राजा बनाना है। कहने लगे, मैं क्यों मेरे से मखोल करते हो, फटे हुए मेरे तन पे कपड़े हैं, दो दो पैसे का घास खोद कर मैं बेचने वाला, अपना पेट भरने वाला, बच्चों का पेट भरने वाला, मेरे से क्यों मखोल करते हैं? कहने लगे, नहीं इस नगरी का रिवाज है। उसको सिंहासन पे बिठा दिया, जब बिठाया तो उसने क्या किया, वो दाती डंबा जिससे घास खोदता था, जिस बोरी में डालता था, उस बोरी में उसने वो दाती डंबा डालकर एक कमरे में रखकर ताला लगा दिया। जब वो सिंहासन पे जाए तो पहले वो ताला खोल कर वो देखे, दाती रंबे को देखकर वो छन छन की आवाज आए तो सबको शक हो गया। आगे जितने भी वजीर कहने लगे, जितने भी राजे आए वजीर से तो कुछ नहीं छिपा कर रखा, तो ये अजीब सा राजा है। कहने लगे कैसे पूछा जाए भाई, क्या तू उस कमरे में रखा? कहने लगे कौन पूछे? कहने लगे चलो फिर ऐसे करते हैं, कोई जश्न रख लेते हैं, जश्न मनाएंगे, सब खुशियां मना रहे होंगे, खा पी रहे होंगे, उस वक्त राजे से ये पूछ लेंगे। ऐसे ही कर दिया। जब राजा कुछ दिखाई दिया तो कहने लगे राजन वो कमरे में क्या रखा है? रोज सिंहासन पे जाने पे राज दरबार में जाने से पहले वहां आप कोई देखने जाते हैं, क्या खजाना हमारे से छुपा कर रखा है? उसने कहा छोड़ो अभी जश्न मना रहे हैं, मनाओ आप खुशियां। कहने लगे नहीं आज तो पूछ के छोड़ना है और देखना भी है वहां जाकर। कहने लगे अच्छा फिर चलो मेरे साथ। ताला खुला, वो बोरी उठाकर उसमें दाती रंबा पड़ा हुआ। कहने लगे ये मेरा खजाना है। सब हैरान हो गए। कहने लगे मेरी उकात तो यही थी ना, आप सबको मालूम है मेरी उकात तो यही थी, मैं घास खोद कर बाजार में बेच कर खाना खाता था, आज राज सिंहासन पे बैठा हुआ मैं इसलिए ये देख लेता हूं कि मैं कहीं प्रजा पे जुल्म ना कर बैठू, नजायज ना किसी को तंग कर बैठू। जब मैं अपनी औकात मुझे याद रहेगी तो फिर मेरे से ऐसी बात नहीं हो सकेगी। तो आओ साथ संगत, जो अपनी औकात याद रखता है वो कभी भी भटक नहीं सकता, क्योंकि उसके जीवन में ऐसी विशालता आ जाती है, तन दिली दूर हो जाती है, क्रोध विरोध सारे जो है वो खत्म हो जाते हैं। हाँ जो जायज होते हैं वो तो आप जानते ही हैं, आपने भी ये साखियां पढ़ी होंगी कि बाबा नानक जी के पास ऐसे कुछ आए तो वो कहने लगे काम त्याग लो, क्रोध त्याग लो, लोभ त्याग लो, मोह त्याग लो, त्याग लो अहंकार, चटपट वचन अपारण। चटपट वो महात्मा था, उसका जोगी का नाम था। तो बाबा नानक जी कहने लगे काम ना त्यागूं, क्रोध ना त्यागूं, लोभ ना त्यागूं, मोह ना त्यागूं, ना त्यागूं अहंकार, गुरु की कृपा से सब होकर नानक वचन पारण। मेरा वचन तेरे से ऊपर है, क्योंकि मुझे समझ आ गई कि मैं क्रोध कहाँ करना है, लोभ कहाँ करना है, मोह कहाँ करना है। हाँ समझ के बगैर जो ये बातें हो ये दुखदाई होती हैं, क्योंकि हमें तो आप जानते हैं कि गृहस्थ में ही रहकर ये इतनी बड़ी दात प्राप्त हुई। गृहस्थ में जो रे उदास को नानक अमता के दास। तो आओ साथ संगत यही अरदास प्रार्थना करेंगे दाता कृपा करना, इसी तरह संतों का संग मिलता रहे, क्योंकि संतों का संग मिलता रहे निराकार भी याद रहेगा, सतगुरु भी याद रहेगा। इसीलिए बार बार साथ संगत मैं तो हर वक्त यही मांग मांगती हूँ कि दाता से ही प्यारे मेरी जिन्हें मिलिया तेरा नाम चिंता है, इन प्यारियों का मिलन हो जो तेरी याद में आप भी हर वक्त ही तेरे रंग में रखते हो, हमें भी हो रंगे रखे। अवसा संगत यही कृपा करना कि जितनी देर तक इस शरीर के विश्वासन कृपा करना कि इसी तरह ये सतगुरु की आवाज सच की आवाज देते देते जब आ थके नहीं सांस बची।